Jai Shri Krishna Prabhu Nityananda Advaita Radha Vasudeva Gaura Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Govinda, 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 Govinda. Jai Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna. Jai Jagannath, 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 Jai Jagannath. Hari Bol. Hare Bol, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. My mother and the one I see, chapter 25, Acts 18. Cảm ơn.
या सूर तथा असुर के बीच जो अंतर है वह उनकी आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर है। ऐसे व्यक्तियों की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उपदेश था असत संग त्याग। जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति अनुरक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को त्याग करो। असत वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है और जो भगवान का भक्त नहीं है, तथा स्त्रियों तथा भोग्य वस्तुओं के प्रति अति अधिक आसक्त रहता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय पात्र है। भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसकी विनयशीलता तथा सहनशीलता। भले ही वह आध्यात्मिक दृष्टि से इतना ही उन्नत क्यों ना हो, वह सदैव विनित तथा सहनशील बना रहता है। जैसे कि कविराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णव ने अपने उदाहरणों द्वारा हमें शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनित तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। उसे ना तो गर्व करना चाहिए, ना झूठे ही फुला रहना चाहिए। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस गुरु
महाराज,
यस गुरु महाराज,
मेरी आवाज थोड़ी कमजोर है, मैं जब लग से दूंगा वो रिपीट करेंगे हमारी सब पीछे हो रहा है। तो पीछे सुनाई दे रहा है
अब सबको, पीछे सुनाई दे रहा है।
इको हियर ओम ज्ञानंजना शक्ति
हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे जिस श्लोक पर भगवान ने चर्चा किया है।
अब सुनाई दे रहा है, पीछे समय भी आ रहा है। तो ये श्लोक मंत्र पी रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं।
यह श्लोक भगवान कपिल उच्चारण कर रहे हैं।
तो वे में भगवान कपिल देव की शिक्षा मैं पढ़ से हो।
इस श्लोक में भगवान कपिल देव का शिक्षाएं प्रस्तुत किया जा रहा है।
कपिल देव भगवान कौन थे?
कपिल देव भगवान कौन है बताइए?
भगवान के अवतार।
वो भगवान के अवतार हैं।
और इस घर में गहराई के साथ भक्ति वर्णन होता है
और बड़े गहराई के साथ वे ये भक्ति के शिक्षाएं हमें प्रस्तुत करा रहे हैं।
तो क्या उपदेश दिया जा रहा है
भगवान? क्या यहाँ पर उपदेश, यहाँ पर क्या उपदेश दिया जा रहा है?
जो भक्त है किस तरह खुशी होनी चाहिए भगवान के नाम को सुने।
भक्त हैं उनके इस प्रकार की रुचि होना चाहिए जो भगवान के और उन्हें ले जाए।
तो स्वयं भी भगवान के नामों का उच्चारण करें
और स्वयं भी हरि नाम का उच्चारण करें।
ओ तो भक्त और भक्त में क्या अंतर?
अभक्त और भक्त में अंतर क्या है?
कि एक ही रुचि रहती है पूरे विश्व में डूबे रहने की, भक्ति इच्छा रहती है भक्ति के मार्ग में जुड़े।
भक्त का रुचि रहता है कि विष्णु भगवान के प्रति वो ना रुचि बढ़ाए।
वो हमें वो एक काय स्वीकार करना चाहिए, वो हमें वहाँ सहयोग देगा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें।
वे हमेशा इस प्रकार का प्रयास में लगता है जो कि जीवन के लक्ष्य की ओर लेकर जाता है।
हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे।
हमें ये पूरा श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान के नामों का जब उच्चारण करेंगे तो हम भगवान के धाम लौट जाएंगे।
वो कहते हैं आगे व्यक्ति को अपने समय का उपयोग करना चाहिए इस माध्यम से नाम के उच्चारण से।
व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए किस माध्यम से? हरि नाम के उच्चारण से।
शास्त्र का निर्णय क्या है?
शास्त्र का निर्णय क्या है? शास्त्र का निचोड़ है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही एव केवलम कलु नास्ते नास्ते नाथे गतिरंता हमेशा।
यहाँ कपिल देव जी कह रहे हैं व्यक्ति को जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ा है उसे ध्यान से रुचि लेनी चाहिए।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें विषयों से दूर रहना चाहिए।
तो हम लोगे तो क्या लाभ मिलेगा?
अगर हम भगवान के
नाम लेंगे,
नाम लेंगे तो क्या लाभ होगा?
बताएगा
कौन? बता पाएगा भगवान के नाम लेने से क्या लाभ होगा?
इधर ब्रह्मार्जुन भगवान के नाम का उच्चारण का मेरा लाभ क्या है?
हेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावग्नि निर्वापणम। पहला लाभ क्या है? हमारा चित्त रूपी दर्पण है वो शुद्ध हो जाएगा।
ओ हमारा लक्ष्य जो हृदय है बोले ही उजाला कहा है।
हमारे हृदय जो है कोयले की तरह काला है।
तो जब करते हो देख रहे हो कि भौतिक आकर्षण कम होते जाता है।
जब करते करते वो कोयला जो है धीरे धीरे साफ हो जाता है हीरे की तरह।
श्लोक का हम बड़ा महत्व महत्व साफ हो लिखा है।
I just missed
me. इस श्लोक में इस श्लोक के तात्पर्य में तो इन्हें बड़े एक पहले परमेश्वर की चर्चा की है।
इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने बहुत सारे गहरे विषयों के ऊपर चर्चा किए हैं।
आगे वो कहते हैं
आगे चर्चा किया जा रहा है कि भक्त को जो है एकदम सीधा और सरल होना चाहिए।
देखिए हम भक्त से व्यवहार करें स्ट्रेट फॉरवर्ड,
जो भक्त होते हैं उन्हें चाहिए कि वो एकदम सरलता और सीधा उनका आचरण होना चाहिए।
ये देखिए हम एक बार एक से कहें दूसरी बार किसी और से कहें,
ऐसा नहीं कि हम जो एक बार एक बात कहें दूसरी बात कहें।
क्या लिखा गया है बाबा जी का ओरिजिनल ट्रांसलेशन, इट बिहेवियर शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
प्रभुपाद जी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम सबको एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। क्या हम सब स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकते हैं? हम खास करके भक्तों के साथ जब संबंध रखते हैं, क्या हम इस प्रकार से अच्छी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड संबंध रख सकते हैं? किसी को कुछ बोलें और किसी को कुछ बोलें, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
आगे भगवान कहते हैं और सारा जीवन होना चाहिए सिंपल,
और आगे भगवान कहते हैं सरल जीवन होना चाहिए,
सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग,
सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग,
सारा जीवन ऊंचा विचार,
सारा सरल जीवन ऊंचे विचार।
लिखा है व्यक्ति को सारा जीवन बिताना चाहिए,
शास्त्र में लिखा है व्यक्ति को सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए।
आज के वातावरण में हम क्या देखते हैं?
हमको जो है
आज के वातावरण में क्या देखते हैं?
आज के वातावरण में हम क्या देखते हैं?
उड़ेना चले राजा जैसे उसने पशु जैसे,
यहाँ पे आज के वातावरण में हम देखते हैं लोग जो है पशु जैसे व्यवहार करते हैं।
एम्पल्सों का मोटो,
और यहाँ पर जो है
हाई लिविंग
होता है और पशुता की ओर जा रहे हैं।
हाई लिविंग का क्या मतलब? अब ये सोच रहे हो जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए?
हाई लिविंग का अर्थ क्या होता है? हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है।
हाई लिविंग का अर्थ यहाँ पर ये सोच रहे हो जीवन बिताना असली चीज है।
हम यहाँ सोचते हैं आज के समय पे कि भोगी जीवन बिताना चाहिए।
भगवान का व्यवहार है सारा जीवन ऊंचा विचार,
ये
भगवान का विचार है,
भक्तों का विचार है कि हमें सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए।
क्या विचार? विचार का क्या मतलब?
ऊंचे विचार होना चाहिए, अर्थात भगवान के बारे में सब।
विचार मतलब आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो,
इस प्रकार से हम जो दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं।
ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उपयोग करो।
हमें जो है ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए।
कह रहे हैं सारा जीवन बिताओ और एक दूसरे से स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो यहाँ से बताया जा रहा है सरल जीवन अपन करना है और जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो है सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपस में संबंध बनाए रखें।
किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता,
वो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता है। वो सबसे प्रेम करते हैं।
द्वेष हमारा शत्रु है,
द्वेष हमारा शत्रु है।
कथा पढ़ते हो
जैसे हम लोग चैतन्य चैतन्य एक कथा सुनते हैं,
वो बहुत प्रसिद्ध मायावादी थे।
वो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मायावादी है,
सार्वभौम भट्टाचार्य।
सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़ा जो है मायावादी है।
एक बेटी थी
उनकी, एक बेटी थी
और बेटी के पति का नाम था अमोघा,
और बेटी का पति का नाम था अमोघा।
तो इसे महाप्रभु आए जगतपुरी में संन्यास लेकर,
जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आए,
वो जगन्नाथ
जी का, तो भट्टाचार्य जो सन्यासी की तरह महाप्रभु का दर्शन किए।
जैसे महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का रूप देखा, वो बेहोश हो गए, नाम कहने लगे जगह 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 कहने कहते।
जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथ जी का दर्शन किए, वो भाव विभोर हो गए।
तो सभी साहब होटल के दरवाजों को बंद करने के लिए, वहां को भोग लगना था।
तो उस समय जो था, भगवान को जगन्नाथ जी को भोग लगना था और चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो चुके थे।
वहां वो एक खूबसूरत सन्यासी बेहोश,
वहां पे एक सन्यासी बेहोश पड़ा हुआ था।
तो यही रहेगा भगवान को भोग लगाना, ये सन्यासी उठाकर जब सर्वभौम भट्टाचार्य के घर,
तो लोगों ने देखा यहाँ पर भगवान को भोग लगाना होगा और इस सन्यासी को उठाकर जो है साइड में सर्वभौम भट्टाचार्य के पास लेकर गया।
उठाकर ले गए सर्वभौम भट्टाचार्य के घर।
तो सर्वभौम भट्टाचार्य उनको उठाकर लेकर गए।
तो भगवान ने आए पीछे और कहा, कोई सन्यासी तुमने देखा है?
तो सर्वभौम भट्टाचार्य इनको देखकर कहा कि इस प्रकार का सन्यासी मैंने अभी तक नहीं देखा।
तो नहीं समझ गए भट्टाचार्य के घर।
तो चैतन्य महाप्रभु को सर्वभौम भट्टाचार्य के घर लेकर गया था।
ऐसे ही भगवान जी पहुंचे सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में, तुलसी महाप्रभु ने उनके द्वारा हाय कृष्ण सुनकर होश में आ गए और नाचने लगे।
तो चैतन्य महाप्रभु जब सर्वभौम भट्टाचार्य के घर पे गए तो हरि नाम का उच्चारण हुआ और चैतन्य महाप्रभु का होश वापस आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रभु जो कि सन्यासी थे उनसे कहा,
तो दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे
से दक्षिण भारत के
एक बेटी थी।
चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के यात्रा किए फिर वापस आए तो सर्वभौम भट्टाचार्य की एक बेटी थी।
भट्टाचार्य ने एक दिन महाप्रभु को घर में निमंत्रण दिया खाने के लिए।
चैतन्य महाप्रभु को सर्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पे महाप्रसाद के लिए आमंत्रण किए।
भट्टाचार्य के पति ने 80-90 आइटम बनाए थे, इसलिए महाप्रभु की प्रशंसा के लिए।
चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, 80-90 आइटम बनाए थे।
ये सब उन्होंने 2 घंटे में तैयार किया। क्योंकि माइक्रोवेव से ज्यादा तेज इक्विपमेंट होगा,
आपके माइक्रोवेव से भी ज्यादा तेजी और अच्छी तरह से उन्होंने बनाया।
मैंने को पता था कि मेरा दामाद महाप्रभु को भगवान नहीं मानता।
अवगम भट्टाचार्य ने सोचा मेरा दामाद चैतन्य महाप्रभु को भगवान करके नहीं मानता है।
तो वो गए थे तो वो भट्टाचार्य का विशाल कर रहे
तो चैतन्य महा सर्वम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद परोसा।
जब महाप्रभु को प्रसाद दिया जा रहा था तो वो भट्टाचार्य ठंडा लेकर दरवाजे में खड़ा रहता था।
जब महाप्रभु जी प्रसाद पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु डंडा लेकर दरवाजे पे खड़ा था।
महाप्रभु
तो चैतन्य महाप्रभु को 80-90 आइटम दिया गया था पर वो खाते थे बहुत थोड़ा।
एक दिन
थोड़े समय के लिए सर्वम भट्टाचार्य को कहीं जाना पड़ा। अमोग को जो है अंदर झांकने का मौका मिल गया।
जैसे उसने झांका तो देखा ओ महाप्रभु के सामने ये सब्जियां हैं
तो ये देखो महाप्रभु सन्यासी है और उनके सामने 70-80 का व्यंजन है वो मीठा है और अलग अलग आइटम है।
महाप्रभु देखो इस सन्यासी को ये बुआ से सन्यास लेता है और अंदर से भी ज्यादा खा रहा है।
देखो ये सन्यासी को ये बाहर से वैराग्य का प्रदर्शन करता है अंदर से जो है गृहस्थों से भी ज्यादा जो है भोग कर रहा है।
ओ इस अमोग की बीमारी हो गई।
तो इसके बाद जो है अमोगा को भयंकर बीमारी हो गई।
वो बहुत बीमार थे।
वो बहुत बीमार हो गए।
अब माँ बापों को सूचना मिली वो निकल जा रहा है।
महाप्रभु ने पूछा कि
माँ बापों को सूचना मिली
अमोग के
अमोगा का जीवन खतरे में है।
तो पता लगा कि अमोगा का जीवन जो है खतरे में
है। तो आए अमोगा की कुटिया में
महाप्रभु आए हमें अमोग की कुटिया में
और उन्होंने कहा देखा कि अमोगा मां है रोगी है पीड़ित है मृत्यु के समय मृत्यु के तरफ जा रहा है।
अमोग अमोग बीमार है और वो जो है अपने कुटिया में जो है लेटा हुआ है।
तो महाप्रभु ने कहा जब तक तुम्हारे हृदय में द्वेष रहेगा और भगवान पाप नहीं होंगे।
अमोग चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब तक हृदय में द्वेष रहेगा तब तक भगवान जो है हृदय में नहीं आएंगे।
भगवान आपको कचरे के डब्बे के निकट में बैठना अच्छा लगता है।
क्या आपको कचरे के डब्बे में बैठना अच्छा लगता है?
कचरे के डब्बे के निकट में
कचरे के डब्बे में बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता
है? नहीं आपको कब्रिस्तान है कचरे के डब्बे के बाजू में आप करोगे नहीं।
अगर आपको स्थान दिया जाए तो आप कचरे के डब्बे के स्थान पे नहीं जाओगे अच्छे जगह पे जाओगे।
उसी प्रकार भगवान को गली जगह नहीं आना एक इच्छा होती।
इसी प्रकार भगवान को भी स्वच्छ हृदय का स्थान पसंद होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमोगा ये जो ईर्ष्या है आपके अंदर उसे त्याग दो।
वो मोगा का ऐसे परिवर्तन हुआ वो नाचने लगा कि मैं महाप्रभु का भाग बन गया
और अमोगा चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से वो पवित्र हो गया और वो नाचने लगा और भगवान का शुद्ध भक्त बन गया।
तो हम भक्त में भी द्वेष रहता है,
तो हम भक्तों में भी द्वेष रहता है।
देख लेंगे कि भक्त में योग्यता है तो आपके पास हो सुविधा नहीं, मन इशारा है।
तो हम देखते हैं कोई भक्त के अंदर योग्यता रहता है, बाहर से तो प्रशंसा करते हैं पर अंदर से द्वेष रखते हैं।
हमें ईर्षा नहीं रखेंगे,
हमें ईर्षा नहीं रखना चाहिए।
आपके आपके कर्मों के अनुसार वो सुख दुख प्राप्त हो रहा है,
अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख प्राप्त होता है।
तो मौलिक जीवन में आप ये नहीं देखते व्यक्ति के पास मुश्किल नहीं है,
हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं किसी के पास मर्सिडीज कार है,
नहीं हम नहीं देखते सबके पास है,
हम नहीं देखते हैं कि सबके पास मर्सिडीज कार है।
अगर भगवान ने आज योग्यता दी है देखो वो आधा देते अगर भगवान ने कोई सुविधा दी है किसी को हमारे पास नहीं है हम ईर्षा नहीं करते हैं करते हैं।
भगवान ने किसी को अगर सुविधा दिया है तो हमें उनके प्रति ईर्षा नहीं करना चाहिए, उनके पास यह है हमारे पास नहीं है।
भगवान
आगे भगवान कहते हैं अभक्तों के संग से दूर रहो।
असत्संग
का अर्थ क्या है?
एक ये आप बहुत है।
असत्संग का अर्थ होता है जिनका मन स्त्रियों में रहता है या भौतिकता में रहता है,
व्यक्ति की रुचि नहीं है,
उन्हें भक्ति में रुचि नहीं है,
बचना चाहिए
उनके संगत से, हमें बचना चाहिए।
अब आप कहोगे जी मैं मोहन कदम बोले बोले
आप कहोगे स्वामी जी हमको भौतिकवादों के संगति में रहना पड़ता है, हम लोग मुक्त जीवन नहीं है,
हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं भौतिकवादियों का संग करना होता है।
ओ, ये है शास्त्रों का उतना ही लो ताकि आवश्यक हो,
इतना ही मिलिए पर उन इतना ही संग कीजिए जितना आवश्यकता हो।
ये तो किताब हट रहे हो और किसी स्त्री से बड़ी से बात कर रहे हो ये सोचते हो कि बातों में मुझे अच्छा लगता है तो ये किताब आ रहे हो उसकी चर्चा करो नहीं आवश्यक हो।
जैसे हम किताब बांटते हैं भौतिकवादियों से मिलते हैं इतना ही संग करो जितनी आवश्यकता है, ऐसे नहीं उनके साथ ज्यादा गुल मिल जाए।
ये श्लोक बड़ा गहरा अर्थ है,
इस श्लोक ये श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है
और इसी विषय की चर्चा करते हैं गहराई के साथ।
और आज जो है
शास्त्रों में इसी विषय का करते हैं गहराई में
हर किसी को इस श्लोक के ऊपर गहराई से जो है चर्चा करना चाहिए, विचार करना चाहिए।
तो कौन कहेगा मेरा पॉइंट क्या था इस श्लोक क्या था?
वन सेकेंड गुरु महाराज
व्यक्ति भक्ति के मार्ग में जो होता है तो क्या करना चाहिए?
वन सेकेंड
जो भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं वे क्या करना चाहिए?
जो भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
पहला क्या पॉइंट है?
पहला पॉइंट क्या है? आध्यात्मिक
का
अपने गुरु से जो है आध्यात्मिक बातें श्रवण करना चाहिए, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या था?
नाम संकीर्तन करना चाहिए, दूसरा पॉइंट नाम संकीर्तन।
बी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तीसरा बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर्जीवन सरलता जीवन।
हम बोले जीवन में बोले वाले थे हो अलग बात, वैसे वैसे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना जाना चाहिए।
हम जो है भौतिक जगत में देखते हैं कि भौतिक जगत में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना बड़ा मुश्किल होता है।
सिंपल सारा
सिंपल जीवन, सरल जीवन होना चाहिए।
आपके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए, आपके प्रति
सबके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए।
अकेले कैसा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है,
इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है।
लाल मार के पिता प्यार कर रहे थे, लाल मार के अध्यापक हो गए द्वारा बेटे का दिमाग बंद खींच गए।
प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पिताजी बहुत प्रयास कर रहे थे प्रहलाद महाराज के दिमाग को बदलने का।
तो जब प्रहलाद को पता लगा ये पिता मुझे राजनीति करना चाहते हैं, इसमें कोई शिक्षा नहीं, तभी मेरे मित्र हैं, कभी मेरे शस्त्र है।
और प्रहलाद महाराज ने देखा मेरा पिताजी मुझे राजनीतिकता सिखाना चाहते हैं, ये मित्र है ये दुश्मन है, पर प्रहलाद महाराज ने सीखा नहीं। भक्तों को देशभाव से दूर रहना चाहिए और सबके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए।
आप इन गुरुओं को अनुकूल करने को तैयार हो, गुणों को अनुकूल करने को तैयार हो,
आप सब इन गुणों को अपने जीवन में अनुकूल करना चाहते हो। बहुत धन्यवाद।
मैं चाहता था कि चर्चा की जाए भगवान राम के विषय का।
अभी हम भगवान राम के विषय में थोड़ा चर्चा।
पूरे भारत में ये महात्मा की रुचि ले रहे हैं राम की गर्दन होगी अयोध्या में।
पूरे भारत में इस समय ये भावना जागृत हुआ है कि राम का जो है अनुष्ठान होने जा रहा है।
राम कौन है?
भगवान राम कौन है?
वो स्वयं भगवान है,
वो स्वयं भगवान है।
भगवान अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं।
भगवान अलग अलग समय में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं,
जैसे कि भगवान राम प्रकट हुए त्रेता युग में,
जैसे कि भगवान राम प्रकट हुए त्रेता युग में,
बड़े भाई प्रकट हुए में, छोटे भाई
उनके छोटे भाई
भगवान ही प्रकट हुए बाद में बलराम के रूप में, कृष्ण के रूप में,
और द्वापर युग में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए,
और वे भगवान प्रकट हुए महाप्रभु के रूप में,
और कलयुग में इस युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए।
तो भगवान के अनेक अवतार हैं,
भगवान के अनेक अवतार हैं।
इन अवतारों का वर्णन आश्रम है,
इन अवतारों का वर्णन शास्त्र में है।
आज के वातावरण में कई व्यक्ति दावा करते हैं हम भगवान हैं।
आज के वातावरण में कई लोग ये घोषित करते हैं कि हम भगवान हैं।
हम भगवान हैं,
हम भगवान हैं,
डोंगी भगवान है,
डोंगी भगवान है,
डोंगी भगवान शब्द इतना सरल नहीं है,
भगवान बनना इतना सरल नहीं।
भगवान उसी कह सकते हैं इसमें इसी प्रकार के गुण हो असीम मात्रा में।
जो भगवान उन्हीं को कहा जाएगा जो जिनके अंदर ये छह गुण है असीम मात्रा में।
क्या है ये छह गुण?
ऐश्वर्य से समग्र से वीर से
सबसे खूबसूरत
सबसे खूबसूरत
और ऑल अट्रैक्टिव।
भगवान सबको आकर्षित करते हैं, ऑल अट्रैक्टिव है।
भगवान का एक गुण है सबसे खूबसूरत है,
भगवान सबसे खूबसूरत है।
सबसे वीर
और सबसे वीर है, बल है,
सबसे स्ट्रॉन्ग,
सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बलवान।
भगवान ने उदयन पर्वत को आगे छोटी उंगली के उठा दिया था।
भगवान ने बाएं हाथ के छोटे उंगली में बड़े पर्वत को उठा दिया था।
फिर बात ही सोच रहे थे ये पहाड़ गिर जाएगा ये छोटे बच्चे की उंगली से।
हम ये पहाड़
इतना भारी है,
पहाड़ इतना भारी है,
छोटा बच्चा कैसे उठाएगा,
छोटा बच्चा कैसे उठाएगा उसे,
ये डर लग रहा था गिर नहीं जाए,
ये
लगता था गिर जाएगा,
सबको लग रहा था, ब्रजवासियों को लग रहा था ये गिर जाएगा।
बोलेगा घबराओ मत नहीं गिरेगा,
भगवान ने कहा घबराओ मत नहीं गिरेगा।
वहां भगवान का बल हुआ था अनेक असुरों के साथ,
वहां भगवान का युद्ध हुआ अनेक असुरों के साथ,
तो भगवान हमेशा विजय प्राप्त हुए।
भगवान हमेशा युद्ध में उन असुरों को मार रहे।
भगवान है शक्तिमान, वो पावरफुल। भगवान है वो पावरफुल शक्तिमान,
मोस्ट सबसे शक्तिशाली है,
सबसे प्रसिद्ध,
सबसे प्रसिद्ध है, फेमस है,
नॉलेज। हम गीता पढ़ते हुए भगवान ने उपदेश दिया था कब, या अवसार को हम भक्तों ने इस सब मेरे स्वामी मैंने सुना है
हजारों साल भगवान ने ये गीता सुनाया था।
भगवान का संदेश है, भगवान की जैसा रूप गीता में ये गीता का वर्णन कब हुआ था, बहुत हजारों साल पूर्व, और ये ज्ञान आज पढ़ते हो माना।
भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया था हजार साल पहले, और यही ज्ञान आज हम लोग पढ़ने के लिए हमें बहुत समय लगता है। पर
तो भगवान
वही ज्ञान हमें भी आज प्राप्त हो रहा
है। भगवान उपदेश है भगवद गीता में, भगवान पर हम भगवान बोल रहे हैं।
हम भगवद गीता में पढ़ते हैं श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कृष्ण जो है परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
गीता में भगवान कहते हैं माथा पाथन नियत किंचित ऐसी धनंजय उच्च सत्य है।
भगवान भगवद गीता में कहते माथा पाथन नियत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे बराबर कोई नहीं है, मुझे बढ़कर भी कोई नहीं है।
साधारण व्यक्ति को चार दोष होते हैं,
चार साधारण व्यक्ति में चार दोष हैं, गलती करने का,
चलने की इच्छा रखते हैं,
वो
चलने की
ठगने की इच्छा होता है,
हम भ्रमित हो जाते हैं,
वो धोखा खाता है
और
मोहग्रस्त होते जाते हैं,
क्या
और इंद्रिया
अपूर्ण गलती करते हैं,
गलती करते हैं, इंद्रिया अपूर्ण होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं और ठगते हैं।
भगवान में ये दोष नहीं है,
भगवान में ये दोष नहीं है,
वो इस बार भगवान,
इसीलिए वो है भगवान।
भारत में कई लोग जो कहते हैं वो राम वो तो अच्छे व्यक्ति थे,
भारत में
भगवान ही थे।
कुछ लोग कहते हैं भगवान राम तो अच्छे व्यक्ति थे पर वो भगवान नहीं है,
भगवान राम और कृष्ण स्वयं भगवान है,
राम और कृष्ण स्वयं भगवान है,
कोई अंतर नहीं, भगवान है जो अलग अलग युग में प्रकट होते हैं, भगवान की प्राप्त होंगे,
भगवान अलग अलग युग में प्रकट होते हैं,
उनके की स्थापना के
धर्म की स्थापना करने के लिए।
तो हमारे शास्त्र राम परम भगवान है,
हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान राम जो है परम पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
उनमें ये नहीं समझा मूर्ति है पत्थर की, इसमें भगवान कैसे आ सकते,
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहते हैं कि ये तो मूर्ति है पत्थर की, ये कैसे भगवान हो सकता है,
भूल जाते हैं भगवान के कोई कार्य असंभव नहीं है, देखते हैं कि भगवान के कोई कार्य असंभव नहीं है,
हम देखते हैं कि भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है,
भगवान एक ठीक से हाथी को डाल सकते हैं,
भगवान सुई के छेद से हाथी को निकाल सकते हैं,
तो वहां जब प्रकट होते हैं मूर्ति के रूप में क्या माना जाए भगवान है,
तो भगवान इस पत्थर में विग्रह में प्रकट होते हैं, भगवान के लिए नामुमकिन नहीं है।
तो भगवान अयोध्या में थे, वहां एक ब्राह्मण था जो 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 रोज भगवान राम के दर्शन के पश्चात भोजन खाता था,
अयोध्या में एक ब्राह्मण था रोज भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करता, फिर करने के बाद वो प्रसाद पाता था,
एक बार भगवान राम यात्रा में थे, ब्राह्मण ने दर्शन के लिए खाया,
एक बार भगवान राम यात्रा में गए तो ब्राह्मण ने 10 दिन के लिए कुछ नहीं खाया,
और ब्राह्मण लौटे कि भाई लक्ष्मण ने कहा ये ब्राह्मण इतना तपस्वी है क्योंकि यहाँ पर दर्शन नहीं मिला 10 दिनों के लिए, उसे कुछ खाया ही नहीं,
तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा ये ब्राह्मण इतना तपस्वी है 10 दिन मैं यात्रा में गया था तो 10 दिन के लिए दर्शन उसने कुछ खाया नहीं,
तो भगवान ने अपनी अलमारी में एक मूर्ति थी उनकी अपने
प्रभु रामचंद्र जी ने अपने जो है अलमारी से उनके एक विग्रह निकाले और उनको प्रस्तुत किए,
वही वही भगवान राम ने लेकर दे दिया ब्राह्मण को, हाँ कि इस मूर्ति की उपासना करो, इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है,
और प्रभु रामचंद्र जी ने उस विग्रह मूर्ति को ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण से कहा इसका दर्शन करो प्रसाद पाओ, मुझ में और इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है,
तो भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है,
भगवान का विग्रह और भगवान के नाम में कोई भगवान में अंतर नहीं है,
भगवान में केवल 2 अध्यायों में राम का वर्णन है,
श्रीमद् भागवतम में 2 अध्याय में प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन आता है,
क्यों
क्यों
सुबेर गोस्वामी का अनेक सज्जनों ने संतों ने वह राम की लीलाओं का वर्णन किया,
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा कि भगवान राम का वर्णन अनेक संतों ने किया है,
मैं संक्षेप में कहूंगा,
मैं इसे संक्षेप में कहूंगा,
तो भक्तों में यह भाव रहता है अगर किसी और संत ने किसी विषय की चर्चा की है वो उसकी चर्चा विषय की चर्चा नहीं करता,
तो संत जो होते हैं अगर पूर्ववर्ती महात्मा ने विशेष चर्चा किया है तो उसका चर्चा नहीं करते हैं,
जैसे कि कृष्णदास कविराज और वृंदावन दास ठाकुर,
जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर,
वृंदावन ठाकुर अपने भागवत में केवल उन लीलाओं का वर्णन करते हैं, ये चर्चा कृष्णदास कविराज ने नहीं की,
वृंदावन दास ठाकुर ने जिस चैतन्य महाप्रभु का लीला चर्चा किए उसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चर्चा नहीं करते हैं,
और कृष्ण वो चर्चा सचिव में करते चर्चा कृष्ण की है नवनाथ ने की है।
और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतन्य में जो महाप्रभु का लीला वर्णन किया उसे वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया।
भगवान प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं।
जब भगवान प्रकट होते हैं वो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं।
आजकल के भगवान को पूछो आप कोई दिव्य लीला प्रकट कर सकते हो अगर फेल हो जाएंगे।
आप आजकल के भगवान से पूछो क्या आप अद्भुत लीला प्रकट कर सकते हो तो दिखाओ।
आज नहीं कल करेंगे
वो बोलेंगे आज नहीं करूंगा।
तो भगवान जब इसलिए जब भगवान के रूप में प्रकट होते हैं वो चार हाथ होते सर।
वन सेकेंड
चार हाथ जब भगवान
भगवान जब प्रकट हुए थे उनके चार हाथ में प्रकट हुए थे
उनका शरीर सजा हुआ था
उनका पूरा शरीर सजा हुआ था।
तो भगवान राम ने भी अनेक अद्भुत लीलाओं को प्रकट
भगवान राम ने भी अनेक अद्भुत लीलाओं को प्रकट किए।
एक हार वैराग्य
एकदम एकता वैराग्य
त्याग जैसे कि दशरथ राम के पिता बहुत पिता बहुत प्रेम करते थे अपने राम बेटे से चार बेटे थे और सबसे ज्यादा आकर्षण राम की तरह था।
एक जैसे कि भगवान के पिताजी दशरथ जी ने प्रभु रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे
कई ने उनके पति दशरथ को सहयोग दिया था जब वो कठिनाई में कई ने अपने पति का सहयोग दिया था वो
एक बार कैकेयी ने अपने पति का खूब सेवा किया था इसके बदले में दशरथ महाराज जी ने वरदान दिए थे।
दशरथ ने पूछा क्या चाहिए
दशरथ महाराज जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए
तुमने मेरी जान बचाई
तो तुमने मेरी जान बचाई है क्या वरदान चाहिए
आज नहीं मैं ठीक समय पर मैं मांगूंगी
आज नहीं मैं ठीक समय आने पर मांगूंगी।
ओ पूरी अयोध्या पूरी अयोध्या जाई हुई थी अगर मैं दिया राम और राम राजगद्दी प्राप्त करने लगे थे।
पूरी अयोध्या जब सजाई हुई गई थी कि प्रभु रामचंद्र का अभिषेक होने वाला है तब
आगे पूछा दशरथ अगर याद हो तुमने एक वर दिया था मुझे
आप लोग ने ध्यान से सुना था स्पष्ट महाराज जी ने बताया कि दशरथ जी आपने जो वरदान के बारे में सुनाया था अब वो समय आ गया।
ओ दशरथ ने कहा हाँ मुझे याद है मैंने वचन दिया था
हाँ मुझे याद है मैंने आपको वरदान दो वरदान दिया था।
आजकल कोई लेकिन मैं कभी आदर नहीं करता आजकल कोई लिखित एग्रीमेंट भी हो इज नो वैल्यू।
आजकल जो है लिखित एग्रीमेंट भी हो तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं।
प्राचीन समय में एक बार वाणी कुछ बोल दिया शुरू करना है
तो इस त्रेता युग में एक बार वाणी से कह दिया तो उसे वो अपना पालन करते ही है।
तो भगवान पूछेगा मैं चाहती हूँ कि तुम राम को 13 साल बनवास में भेजो और मेरे बेटे भारत को राजगद्दी में बिठाओ।
तो मैं चाहती हूँ कि प्रभु राम को जो है वनवास भेज दिया जाए और मेरे बेटा भरत को जो है सिंहासन दिया जाए।
दर्शन का कई वैसे कैसे मांग सकते हो
दशरथ ने कहा कई कई ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप
राम को ऐसे दूर नहीं भेज सकते
आप राम को मेरे हृदय से दूर नहीं भेज सकते हो।
पूरी अयोध्या में तैयारी हो रही है राजगद्दी दी जाएगी राम को
पूरे अयोध्या में तैयारी हो रही है प्रभु राम के अभिषेक का
कहने का आपने वादा दिया था तो पूरा करना चाहिए आपको वादा।
कई कहने कहा आपने वादा किया था वो वादा को पूरा करना होगा आपको।
तो दशरथ ने अपने वचन का पालन किया। जो ब्रह्म को कहा दशरथ सोचा था हम क्या कहेगा, मेरी सब तैयारी हो गई है राजगढ़ में बैठने के लिए, अब मुझे भी यहाँ से दूर कर रहे हो।
तो दशरथ जी ने जो है ये सुनकर प्रभु रामचंद्र जी को जो है वनवास के लिए कहा, अगर उनके जगह पे कोई और होता इस प्रकार कर पाता
तो राम जी ने विनम्रता का भाव प्रकट किया।
राम जी ने विनम्रता का भाव प्रकट किया था
और बल्कि आदेश का पालन किया।
उन्होंने अपने पिता का आदेश का पालन किया था।
यह है परम भगवान,
यह है परम भगवान।
आज भी हम राम राजा की चर्चा करते हैं,
आज भी हम प्रभु राम जी का चर्चा करते हैं,
राम राज्य की चर्चा करते हैं,
हमें राम राज्य का चर्चा करते हैं,
राम राज्य,
हम राम राज्य चाहते हैं।
तो राम राज्य के समय सारे अयोध्यावासी राम के भक्त थे,
सारे अयोध्यावासी राम के उपासक थे।
और इसी प्रकार का क्लेश था समाज में,
और वहां पे किसी प्रकार का क्लेश का संभावना नहीं था।
जो जन्म नहीं मरा नहीं,
वहां पे जन्म नहीं होता था ना मरण होता था,
कोई हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं,
वहां पे कोई हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं होता था,
सारे डॉक्टर अनएम्प्लॉयड थे,
सारे डॉक्टर अनएम्प्लॉयड थे
क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता था,
क्योंकि किसी को बीमारी नहीं होता था।
अगर मृत्यु के समय भी आपको चुन सकते थे,
और मृत्यु के समय भी वो चुन कर आप स्वीकार करते थे।
you could choose your own moment of death. आप कुछ चुन सकते थे, अब कब आप मरना चाहते हैं।
वो इस प्रकार से अपने मृत्यु के समय वो लोग चुनकर जो है स्वीकार करते थे।
अगर ये छुटाज मिल जाए शमशान घाट बंद हो जाए,
हमें इस प्रकार का अगर सुविधा मिल जाए तो क्या हम क्या करते,
हम कहेंगे
सारे शमशान घाट बंद हो जाता है
कि कोई मरने को तैयार नहीं होगा,
क्योंकि कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होगा।
तो आज के भाषा में पॉलिटिशियन को कहते हैं हमें वोट दो हम राम राज्य लाएंगे,
आज के वातावरण में पॉलिटिशियंस कहते हैं हमें वोट दो हम राम राज्य लाएंगे।
राम राज्य के समय पूरी प्रजा आगे उपासक,
राम जी के इस अयोध्या में सभी जो है राम जी के उपासक थे।
तो राम जी की स्थापना की जा रही है,
कल राम जी का स्थापना की जा रही है,
क्या इसके पीछे पूरे का भाव हो, कम से कम राम जी का नाम लिया जाए,
क्या है इसका भाव, कम से कम यहाँ पे राम जी का नाम तो लिया जा रहा है,
चाहे पॉलिटिकल भाव हो,
चाहे वो पॉलिटिकल भाव हो फिर भी राम जी का नाम लिया जा रहा है।
भगवान कहते हैं गीता में सात प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं, चार,
भगवान भगवत गीता में कहते हैं चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं, चार प्रकार के,
एक जो दुखी है,
एक दुखी व्यक्ति है,
आपके दुखी होगी होते हो तो फिर भगवान का स्मरण,
जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम भगवान का स्मरण करते हैं।
एक है जैसे धन चाहिए,
एक है जिन्हें धन चाहिए,
एक है जैसे वो
जिज्ञासा,
नाम के नाम,
एक है जिनको जिज्ञासा होता है कहाँ पे सुख मिलेगा ज्यादा,
वो कोई भी भाव हो कृष्ण की भक्ति करो,
तो कोई भी भाव हो पर ईश्वर के पास आओ,
चाहे कोई भी भाव हो जैसे राम जी की मूर्ति स्थापना हो रही है करेगा, भगवान राम का नाम लोग लेंगे जीवन को सफल बनाएंगे,
चाहे कोई भी भाव हो राम जी का यहाँ पे मूर्ति का स्थापन हो रहा है इससे लोगों का
भला होगा।
लोग सोचते ब्राह्मण हम लेंगे तो विचार करेंगे तो हम जीत जाएंगे में, ठीक है।
और इस स्थापना में राम जी का नाम लिया जाएगा और राम जी का नाम लेंगे तो हम लोग का जीवन सार्थक हो जाएगा।
अगर हम सोचेंगे राम जी की भक्ति की स्थापना के द्वारा हमें एक वोट मिलेंगे, ठीक बात हो। अगर आपके मन में ये विचार है कि हम राम जी की स्थापना करेंगे तो हमारे इलेक्शन में लाभ होगा, ठीक है।
अगर हम लोग इस भाव से राम जी का स्थापना करेंगे तो इलेक्शन में हम जीतेंगे तो ये भाव भी ठीक है, क्योंकि इससे राम जी का नाम का उच्चारण पूरे देश में हो रहा है।
भगवान श्री राम की
जय।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। गोपाल कृष्ण किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न क्या? दो वरदान क्या है? वरदान जो है
वरदान क्या है?
वरदान द टू बेनेडिक्शंस
या
नहीं? इज आस्किंग द टू बेनेडिक्शंस सो 14 इयर्स ऑफ एग्जाइल एंड भरत शुड बी नहीं इस क्वेश्चन इज क्या वरदान क्या है? तो उसका दो वरदान महाराज श्री गुरु महाराज जी ने कथा में बताया कि राम जी को वनवास एक हो गया। बात समझ में आया? वनवास का अर्थ होता है वन में वास करना। वरदान का अर्थ क्या है? वरदान का अर्थ होता है आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स होता है, या वरदान का अर्थ वरदान होता है।
My confidence reflected in my smile. But now...
While brushing, if you see blood, you may have gum problems. Plaque builds up on the gum line and weakens it. It may worsen over time, leading to tooth loss. Use Parodontax toothpaste. It's 4 times more effective in removing plaque. Parodontax.
Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरि हरि हरे राम हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा कृष्णा हरि हरि Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava. जय राधे माधव कुंज बिहारी जय राज
बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
गोपी जन जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन वल्लभ।